राम।
ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अगस्त 91 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम।
नारायण 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 नारायण। भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला प्रकरण पूरा हुआ। ऐसे निर्माण मुहात संग दोषा अध्यात्म नित्या प्रवृत्ति कामा बंदे विमुखा अविनाशी पद को प्राप्त होते। अविनाशी पद कैसा तुझे एक श्लोक यह है बीच के प्रकरण का, मानो ईश्वर के प्रकरण का है। उस धाम को प्राप्त होते हैं इस वर्ष उस धाम का वर्णन कर दिया। अब ये वहां जाकर लौट कर क्यों नहीं आता, तो ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से ये जीव मेरे ही अंश है। मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी। मन है छठा जिसमें इंद्रिया है पांच, ये प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहते हैं। और कर्षत ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपने इस तरफ नहीं आती, ये प्रकृति स्थानी है। और जीव है मेरा अंश, परंतु मेरे में स्थित न रह करके इन प्रकृति के अंशों को खींचता है। और मन शोषण इंद्रियाणी इतने सपूत है कि प्रकृति में स्थित रहते जाते नहीं। तुम कर चुको खींचो मेरा मेरा मानो, रहते प्रकृति में आपको ऐसा रहेगा नहीं, आपके साथ रहता नहीं। परंतु जीव इनको खींचता है और इंद्रियों के विषयों को फिर खींचता है। शब्द स्वरूप रस गंध इनमें आसक्त होता है। ये तुम्हारे नहीं है भाई, ये है संसार के, परंतु इनमें यह फंसता है और इसी से जन्मता मरता रहता है, दुख पाता है, मुफ्त में दुख पा रहा है। अपनी चीज नहीं है, ये बेईमानी है। इस बेईमानी का डंडा पड़ेगा, जन्म जरूर मन का कोई अंत नहीं आएगा। कब तब जन्मेगा कि मरेगा इसमें कोई हिसाब नहीं है, अवधि नहीं है। ये मनुष्य जन्म है उसे छूटने के लिए, परंतु ये प्रकृति स्थानियों खेलता है। कब खेलता है? हर समय। अगर ही कहेंगे विषयान उस सेवा से विषयों का सेवन करता है, परंतु उनको आकर्षण लगा है इधर ही। मिले न मिले ये बात एक अलग है, परंतु प्रियता इनके विषयों में है। जिसका अर्थ है उधर तो प्रियता नहीं है, परमात्मा का साक्षात अंश भगवान कहते मेरा अंश है। परमात्मा का अंश होकर जड़ प्रकृति के अंश को पकड़ा है इसने, तो सभी रंग आपनोती उत्क्रामती ईश्वर गृहित सारे संज्ञाती वायुर गंधा निवास। कहते ये परमात्मा का अंश होकर जब ये शरीर छोड़ता है, उत्क्रमण करता है और दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, तो एतानि गृहीत्वा इन इंद्रियों को पकड़ करके और जाता है, मन इंद्रियों के विषयों को साथ में रखता है, मन स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म और कारण शरीर बदलता है, ये छूटता नहीं है, स्थूल तो छूट जाता है, यह जिस जूनी में जाए उसी जूनी का वैसे ही शरीर हो जाता है सुख और काल। तो प्रकृति से जो ये है पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय पांच प्राण मन बुद्धि ये सुख से ये सत्रह तत्वों का, तो इस उत्क्रामति यहां से उत्क्रमण होता है, उत्क्रामति सही जगह वो आप लोग थी, यहां से उत्क्रमण कर जिस शरीर को प्राप्त होता है वो पशु पक्षी देवता राक्षस असुर भूत प्रेत के साथ जिस दुनिया को जहाँ प्राप्त होता है तो इनको लेकर के साथ में जाता है वहाँ। ये सब जगह चलती है इंद्रिया, पशु योनि पक्षी योनि में भी देव योनि में भी राक्षस असुर योनि में भूत प्रेत पिशाच योनि में भी इंद्रियों के भोगों को छोड़ता नहीं, अपने को पकड़े रहता है। ये समझता तो है कि इनसे सुख हो जाएगा आराम ले लूंगा, परंतु के शत्रव संत निज इंद्रियाणी। प्रश्नोत्तरी में आया है कि शत्रु कौन है, मनुष्य के शत्रु कौन है, निज इंद्रियाणी अपने इंद्रिया यही शत्रु है। अस्तान्ये व मित्राणी जितानी यानी अगर इनको जीत लिए जाए तो ये पांचों ही मित्र हो जाए और इनके बस में हो जाए तो ये शत्रु हो जाए। जैसे मोटर में हम चलते हैं वो मोटर हमारा कहना मानती है तो हमारी मित्र है कि जहाँ जाना वो पहुंचाते हैं, वो चला हुआ ऐसे चलती है ऐसे ऐसे भीड़ चलती है उसके बस में हम हो जाते हैं, हमारे बस में मोटर नहीं रहती, तो मैंने किस पेड़ से टकराएगी किस खाड़े में गिराएगी इसको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही ये इनके बस में हो जाता है, इनको पकड़ करके इनके बस में हो जाता है। कोवा दुर्जन वे मेरा जाता अपमान नीति में आया है कि दुष्टों के एक चंगुल में फंसने वाला कौन कुशलपूर्वक घर पर आया है, वो कुशलपूर्वक नहीं आ सकता, इनके बस में हो गया है। दुर्जन वागुरास वो इन इंद्रियों के बस में होकर के दुख पाता है, बहम है कि मैं सुख ले रहा हूं पर सुख तो है थोड़ा। विषय इंद्रिय संयोगात यत्र लग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव, थोड़े से एक देर में सुख अमृत के दिखता है, परिणाम में जहर की तरह सुख है ये, ऐसे जहर से सुख है उसको लेता है। विषय संबंध से पैदा होने वाला सुख, तो संबंध होने वाला कहा यही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य सुख में भोग है दुखों के कारण है, संबंध जन्य सुख वो अपना दुख है नहीं, संबंध जन्य वो तो मिट जाता है और दुख पैदा हो जाते हैं इनसे। दुखों के खास जन्म स्थान है वह दुख ही दुख, दुख ही दुख, और आगमा पाई आने जाने वाला मर्द बनने वाला मिटने वाला सही हो वियोग होने वाला अनित्य है। आद्यंत बनता ये आदि अंत वाले हैं, न तेसु रमते बुझा, विवेकी इन विषयों में रमण नहीं करता, परंतु सज्जन हो इनकी ऐसी एक प्रबलता है, अच्छे अच्छे साधन करने वाले वे भी अंत हो जाते साफ, महान पतन के गर्त में चले जाते, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर ये क्या होगी दशा भगवान ही जाने। गीता में आया है कि भाई ऐसे है पुरुष से विवस्थित इंद्रियाणि प्रमाशीलि हरन्ति प्रसुभम माना। ये प्रमोशनशील इंद्रिया है बलात्कार से मन को हर लेती है। देखता बड़ा सुंदर ये सुख ले लूंगा इसी द्वारा विषयों के सुखों को फंसकर कितने कितने अन्याय कर देता है कितना अत्याचार करता है कितने कितने बड़े पापों का संग्रह कर देता है जिसका दुख कितने जन्मों तक कहाँ तो भोगना पड़ेगा जिसको कोई ठिकाना नहीं है। शास्त्रों की बात देखी जाए तो कितना दुख होगा इसका क्या ठिकाना है। हमारे वही दिल जहल जैसे राम 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 क्या कर रहे हैं सुनते हैं नहीं मानते हैं नहीं। अगर दशा क्या होगी फिर हाथ में नहीं रहेगी सो परत दुख सिर धुनी धुनी बचता है परत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी बचता है। हर लोग में दुख पाएगा हर लोग में इस लोक में ही सुखी नहीं रहेगा। इंद्रियों के भोगों में फंसने वाला कभी सुखी नहीं रहता। दुखा रहे मसाज होता पिछले दिशा में थोड़ा सा दिखता है। संतों ने कहा कि रतिक सुख के कारण से ही रोश जन्माना हारो रे ऐसा बड़ा सुंदर तुम्हारे को शरीर मिला है जिसे तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो ऐसा उसको क्यों हारते हो। ये तुच्छ भोगों के लोभ में संग्रह भोग भोग संग्रह संग्रह भोग रुपया इकट्ठा करें भोग भोग रहे रुपया इकट्ठा जाए खजाना में और ये जिसने भोगा ये जरा दस खिता में स्वाहा बहुत आराम किया सुख भोगा सुख ही नहीं की नतीजा क्या होगा स्वाहा हो गया मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी ये दशा हो जाएगी। देखता है सुनता है समझता है मानता नहीं ये अपरिचित बात नहीं है ये अज्ञानी बात नहीं है अपन देखता है जुड़ता है समझता है। पुरुष से विपस्थित है कहा है पंडित है समझदार है पर इंद्रियाणी प्रमाशीलि हरन्ति प्रसुभम बलात्कार से मन को ही हर लेती है अब चला जाता है। गृहत्वा एतानि संज्ञासि वायु गंधारी वायु जैसे वायु किसी अतर के फौवे में तो पुष्प में होने वाली सुगंधि को ग्रहण करके वो चला जाता है अगाड़ी ऐसे ये इंद्रियों की विषया शक्ति को इंद्रियों को लेकर के और अगाड़ी चला जाता है दूसरे शरीर में वहां जाकर भोग वहां भोगने लगता है। वो जैसे जैसे जोनी में जैसे जैसे उनके अनुसार से देवानी में दिव्य स्नंत ज्ञान देव देव भगवान वहां देव भोग दिव्य भोगों को भोगता है या निकृष्ट भोगों को भोगता है। कौन से भी इंद्रिया थे स्त्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्ताय विषयानुपसेवति। अब यहां से उठा तो ये शरीर अवाप्नोति जिस शरीर को प्राप्त होता है उस शरीर में रह करके मन को अधिष्ठित करके और ये पांचों इंद्रियों का भोग वहां भोगता है। जैसे कोई दुकान यहां उठी वहां दुकान लगा ली फैला ली अपनी ऐसे उस जन्म में वहां फैला करके यही बीच में भोग तो ये रहते हैं पर दुकान दूसरी हो जाती है उसमें तरह तरह के भोग होते याद ही नहीं रहता क्या कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ पहले क्या किया था उसके नतीजा क्या निकला इन बातों का मलाल बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कितनी आश्चर्य की बात है कितनी बड़े दुख की बात है। सज्जनों सावधान हो जाओ अभी वो चेत करो यहाँ आए हो और इंद्रियों के भोगों में लगोगे तो क्या दशा होगी। देखने में तो ठीक दिखता है परंतु परिणाम है विषम एवं विषेन्द्र संबंध से सुख होता है, परिणाम है विषम एवं जहर की तरह होता है। जहर तो एक जन्म में मारता है और ये विषया शक्ति कितने जन्म में मारेगी जैसे कोई अंत नहीं है। न तन पाए विषय मन दे ही पलट सुधाते सठ विषय मनुष्य भी पाप के और इंद्रियों के भोगों में मन लगाता है, उनमें फंस जाता है, उनके लोभ में लग जाता है। तो वे क्या करते हैं, पलट सुधा अमृत के बदले जहर देते हैं। जहर तो मुफ्त में जहर तुम कौन खाएगी, मरना मर जाएगा उसे। अमृत नाम हरि को त्यागो विषया में लपटानो। भगवान का नाम अमृत है, तो अमर कर दे, सदा के लिए अमर कर दे, ऐसा नाम वो नहीं रहता। सुनो उमाते लोग अभागी हरित जी हो विषय अनुराग। सज्जनो भाइयो बहनो ध्यान दो, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस प्राप्ति के साथ उनको छोड़ करके हरि से जो हो विषय अनुरागी, विषयों में अनुराग करता है, भोगों में अनुराग करता है, और वो अनुराग की आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और जगह ठिकाना नहीं है, ये मानव शरीर में ही ठिकाना है, यहाँ श्रृंखला से बाहर होने का समय है। और ये आया है मौका, बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा है। एक कहानी आती है कि एक सूरदास एक शहर में चला गया, शहर बहुत बड़ा था, उसे चार दीवार एक तरफ दरवाजा था और दीवार दीवार से तरफ, तो कोई बताया नहीं, बताने वाले की मानी नहीं। वह जगह के सफील को देखते हैं, इस दीवार को देखते देखते आपका दरवाजा आ ही जाएगा। एक तरफ तो लाठी है, एक तरफ दीवार है, अंधा है, दिखता है, चलता है, तो कहीं खाड़े में गिरता है, कहीं झाड़ में टूटता है, कहीं अकड़ता है, दुख पाता है, परंतु करे क्या, उपाय नहीं है। ये दो बात है, कहना मान ले तो ठीक हो जाए, अथवा विवेक खुद हो तो ठीक हो जाए। अज्ञस्त अश्रद्धा संशय आत्मा पहले से थी, स्वयं को तो ज्ञान नहीं, और जो ज्ञान है बढ़ाते उनकी बात सुनता है, वो मानता नहीं, वो समझेगा ये समझते नहीं, समझते नहीं हूँ मैं कहूँ तो ठीक है, ये नहीं सुनता नहीं, मूर्ख से पंच चिन्हा नहीं, गर्वी दुर्भजन गर्व घमंड होता है, दुर्भजन बोलता है, हट करता है, प्यारा नहीं बोलता, और परोक्तम नहीं वो मैं लेते, और मैं कह दिया अब नहीं माने, कर भी लेते ऐसा, पर तुमने कह दिया अब नहीं करेंगे, अब ये बात नहीं करेंगे। तो अज्ञ सर अश्रद्धा अज्ञता भैया भी थी, और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कहना मानता नहीं है, तो विदेश पतन हो जाता है, बड़ा भारी पतन होता है। तो सूरदास चलते 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 ऐसे चलते रहे, चलते चलते दरवाजा आया, तो दरवाजा आया ठीक तरह से, उसे पहले हाथ लगाया, इतने माथे में खुजार चली, ऐसे करते करते लाठी से अंगड़ देखा गया, और दूसरे का वो दूसरा दरवाजा, दूसरे दरवाजे का वो किनारा चला गया, उसमें पकड़ लिया। अब उसे सारे तक फेर वो पूरा चक्कर काटे तब दरवाजा आए। ऐसे ही सज्जनों ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख जूनी में दरवाजा नहीं है, एक जूनी बाद दूसरी जूनी में तीसरी जूनी चौथी लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार सतयुग से चातवा पर खाली लाखों वर्ष बीत जाते दुख पाता होता, कब मिलेगा मानो बड़ी मुश्किल है। भगवान कृपा करे कब वो करी करुणा नर कृपा करके भगवान कभी बीच में भी मनुष्य दे देते हैं, प्रदूषण फिर पाप कर लेता है वो कल क्या ने आया सोलह से भुगतने फिर जावर ने किया ये विश्वास। भाइयों बहनों ध्यान दो आप बड़ा विचार आता है क्या करें कुछ उपाय सूझता नहीं कहना मानते हैं नहीं क्या करें हमारी बड़ी नशारी हो जाती है क्या करें कैसे करें मन में आती है कि भाई इनको कह दे बस चेता दे फिर देखते तो हमारे को कहना आता नहीं समझाना आता नहीं समझा सकते नहीं। अगर कहना आता तो हमारी बात सुनने वाले कुछ तो मानते पर तो मन में समझते हैं कि यूं ही पागल की तरह बकता है ये समझते नहीं स्वामी जी समझते नहीं ऐसा कहते हैं मेरे सामने आकर कहते हैं सुना है कि समझते नहीं तब बेसमझी बात को सुन कोई पागल बात कहता है तो हम सोचते हैं ये कि पागल है माथा खराब हो गया बात करता है ऐसी दशा हो रही है हमारी हम दुख पा रहे हैं बताना चाहते हैं कहना चाहते हैं ऊंधा उल्टा अर्थ उसका लेते हैं ऊंधा उल्टा फिर उसी जा रही है बड़ी तेजी से क्या करें शेर जी ने कहा था कि जैसे कोई पानी में डूबता हो और भी हमारे पास तैर कर निकालने का तो कोई सामान नहीं है ऐसा हम जानते नहीं दया आती है करे क्या डूबता ही होता है ऐसे वो सूर्यदास की दशा फिर वो चक्कर काट करके अभय आवे उस समय मौसम खुजाल चले सरों को कहा करते हैं माथा क्यों नहीं माथा फिर मौसम में खुजे चले मानो मार पड़े गया वह खुद भोग भोग देखा खुशी हो रही है राजी हो रहा है भाइयों बहनों ये राजी होने का नहीं है ये तो काम करने का है असली काम करो उसके लिए मानो से ही मिला है वृथा बकवास करने के लिए वृथा बर्बाद करने के लिए वृथा पापों में फंसने के लिए अगर इस 84 लाख दूरी के पापों की तैयारी करने के लिए मनुष्य नहीं मिला कि आगे अनंत जन्मों तक दुख पाते रहे इतनी सामग्री इसमें तैयार कर रहे क्या मानते नहीं सुनते नहीं अज्ञ से अश्रद्धा धारण से दोनों बातें बनी विकार स्वयं विचार करते नहीं सुनते नहीं सर से आता मेरे राम 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 तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चलम श्रोत्रम कान चक्षु आंख स्पर्शनम त्वगेन्द्रिय रसनेन्द्रिय जिसे रस सकते हैं तरह तरह का रस और ये घ्राण इंद्रिय सुगंधि लेते हैं ये पांच है इनको शास्त्रों में ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं गीता तो ज्ञानेन्द्रिय नहीं कहती गीता तो कर्मेंद्रिय कहती है सब कर्मेंद्रिय कर्म होता है इससे भी वो भी कर्म है और कर शरणादि ये कर इनसे भी कर्म होता है कर्मेंद्रिया सही में आस्ते मन शास्त्र मन इंद्रिया अर्थात मूठा मिथ्या साझा सोचे थे और कर्मेंद्रिय कर्मयोग आरभ से सविशिष्य थे तो कर्मेंद्रिय नाम आए नहीं वो किंचित करो मैं जो पश्चन सुनन स्वसन देखन स्नान गर्सन स्वपय श्वसन प्रतन विसन उन्मिशन निमिषन अभी 11 क्रिया 13 क्रिया बताई तो ये सब क्रिया इंद्रियों की होती जो कर्मेंद्रिय आए शरीर वांग मनोभी हित कर्म प्यार शरीर वाणी और मन से मानसिक भी कर्म ही है वो भी कर्मेंद्रिय है पंचेतर से ये तो ज्ञान इंद्रिय कहाँ ज्ञान कहाँ ज्ञान तो होता है तो प्रकाश हो जाता है ज्ञान तत्व से तुम निर्मल प्रकाश को मना वो प्रकाश होता है निर्विकार होता है ऐसा होता है पर वो नहीं है इंद्रियों के फर्श ऐसे तामसी और राजसी वृत्ति हो जाती है लोगों के वश में हो जाता है और इनके वश में होकर दुर्गति का रहता है बड़ी तो स्वतरंग चक्षु स्पर्शन से रसन घ्राण देव से अधिष्ठाय मनस्थाय मन को अधिष्ठित करके मन से चिंतन करता है, फिर भोग भोगता है और उसमें मन लगाता है, तत्पर हो जाता है मन में। और जितना मन से तत्पर होता है उतना ही उस विषय का संस्कार गहरा पड़ता है। एकांत में भजन करेगा तो वो याद आएगा। भक्ति रसायन में प्रसंग आया है, उसमें लिखा है कि जैसे वहां तो लाख का दृष्टांत दिया है, चित्त जब बिंदु चतुवत स्वभाव कृष्णात्मकम, पर तो अपन ठीक समझने के लगे मोम होता है ना, मोम मक्खी हो, ऐसा चित्त है मोम की तरह। जिस किसी विषय को ठीक तरह से सेवन करेगा और सम्मान लगाएगा तो उसमें चित्त पिघल जाता है, पिघले हुए मोम में रंग भीतर बैठ जाता है। ऐसे मोम के ऊपर रंग लगा दो दिखेगा पर नक्श होकर सुन जाएगा, साफ निकलेगा। पर कटोरी में डाल करके आग में लगा दो, उसमें रंग दो फिर मिल जाएगा सब में। अब तो रंग छोड़ता है। ऐसे मन उसमें विषयों में रंग जाता है और भोगों में जुआश होता जाता है। वर्षों तक 15-20-50 वर्ष हो जाए, 40-50 वर्ष भोगे हो भोगों का हो गया, तो भी उनमें नई नई बात पैदा होती है, वो भी याद आती है, स्मृति होती है, कैसा शोक है वह। तो क्या है कि मन में वो बस गया, जितना तल्लीन अधिक होता है उतना ही विषय का संस्कार उनमें भीतर बैठता है, और जितना वो भीतर बैठता है उतना ही दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दशा हो रही है सज्जनों, विचार करता है मिटाना चाहते, उसके सामने ऐसी कठिन समस्या आती है कि जो भोगों में जाते हैं लगे इसमें कामो परमार्थ निश्चिता ही भोग भोगना ये निश्चय कर लिया है, उनकी क्या दशा होगी भगवान ही जाते। बड़ी मुश्किल हो रही है सज्जनों। माँ में ये प्रबंधन थे माया में, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो ये छुटकारा बड़ी सुंदर हो जाता है। पिछाड़ी प्रकरण में यही कहता, मैं बचा दम पुरुष हम प्रबंध यही उपाय बताया पहले प्रकरण में, उस आदिनारायण के मैं शरण हे नाथ हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, तो बचाना बचो तैयार, परंतु बचना चाहते ही चाहते नया नया भोग, और भोग चाहते वो भी न्यायपूर्ण अन्यायपूर्वक, शास्त्र की विधि नहीं है, शास्त्र निषेध करते हैं, चोरी है डकैती है व्यभिचार है धोखाबाजी है विश्वासघात है, ऐसे ऐसे पाप करके धन कमाता है भोग भोगता है, छिप छिप करके गुप्त हो करके भोगता है। ये पाप होता है वो गुप्त रीति से बहुत भयंकर होता है, और गुप्त रीति से पुण्य होता है उसका भी बड़ा नतीजा बढ़िया निकलता है। पर किया क्या जाए, छिप कर करता है, डरता है कि हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए, फजीती नहीं हो जाए, फजीती तेरी हो रही है, सोचता नहीं समझता नहीं, मनुष्य से बचना चाहता है कि इनको पता ना लगे, महाराज पता क्या लगे पहाड़े चौड़े आ जाते, उगरे अंतन हो बाहू काल नहीं मुझे रावण राव कितने छिपा लिया, रावण साधु बन गया तो साधु में कितना सर, राहु केतु दोनों देवता बनकर देवता में पंख बैठ गए कितना हुआ, काल ने भी बाबा जी बन गए, हनुमान जी को ले जाओ स्नान कर जाओ तुम्हारी दीक्षा ले आ जाए, वहां बकरी ने पकड़ा कहा महाराज ये राक्षस है आपको ठगने के लिए आया है कि ये बीत जाए समय दिन उदय हो जाए तो उसे दुश्मन मर जाए, ऐसी बात है। हनुमान जी महाराज बन गए चलो दीक्षा देऊ तो केवल भेज कर हम भाग उन सब बातें जोर से पट गया खत्म कर दिया, अब भेंट दे दो महाराज पहले तो सब मंत्र नहीं हो गए ऐसी कोई। तो काल ने मुझे रावण राहू वो बात प्रकट हो जाती है, लोगों में भी प्रकट हो जाती है, निंदा भी होती है, अपमान होता है, हृदय से गिर जाता है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, फिर भी मैं छूटते क्या करें बताओ। हमें तो बड़ा आश्चर्य आता है, दुख लागे और वो हंसी आवे, अजीब जमाना आया है, दुख लागे की दशा क्या होगी। वो हंसी आते थे तो समझदार हो, कहाँ जा रहे, कितने पापों में जा रहे, पैसे के लिए कितना अन्याय कर रहे, भोगों के लिए कितना अन्याय कर रहे हैं, भोग और पैसों की आसक्ति को बढ़ा रहे, अन्याय करने वाली चीज को बढ़ा रहे, अन्याय कर करके उसको पोषण कर रहे, पुष्टि कर रहे। राम 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 राम। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आ जाओ, बड़ी अच्छी बात है, अभी मौका है, कलयुग का मौका जो चारों युगों में श्रेष्ठ माना गया है भजन करने वालों के लिए। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है ये कल युग का, सुगमता से कल्याण हो जाए। सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसा कल्याण कितनी उत्तम बात है, मुक्ति हो जाए जीव की, ऐसा सुंदर मौका। और उसमें गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय, भगवान का नाम सुनने को मिल गया, महिमा सुन ली, इतनी होने पर भी फिर भी मेरा चीत सभी इतनी ख्याल ही नहीं करता, तरह तरह के भूखों में फंसा हुआ, छिप छिप करके किसी तरह से ही पाप कर भोग कर ले, बस ये दशा हो गई। राम 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 राम, क्या बताओ सज्जनों, विषयालोक से होश नहीं हो। उत्क्रामंतं स्थितं वापि पुंजानं वा गुणान्वितं, ये तो उत्क्रामती उसके लिए उत्क्रामंतं, और फिर अधिष्ठाय मनस्थाय विषयालोक सेवते और सही रंग वापन होती, तो उत्क्रामंतम स्थितम दूसरी में स्थित हुआ, और भुंजानम व गुणान्वितम अधिष्ठाय मनस्थाय विषयालोक सेवते भुंजानम व गुणान्वित, मूढ़ा नान पुष्ट, ऐसी मूर्ख बुद्धि होगी सामने मरता है, दूसरे से धारण करता है, भोग किया पहले उसको देखता है, फिर भोगों में लग जाता है। गुणान्वितम सत्वरजतम गुणों में फंस करके और गुणजन्य भोगों का भोगता है, विमूढ़ा, इनकी बुद्धि बहुत मलिन हो गई है, मूर्खता छा गई है, ध्यान परिश्रम देखते नहीं तो स्वयं देखते नहीं, कोई सुनावे तो उनकी सुनते नहीं, सुनाने वालों को कहते हैं मूर्ख है, समझते नहीं, बेसमझ है। राम 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 राम, क्या करें, हमारे तो बहुत विचार आता है मन में, क्या करें, कोई उपाय नहीं दिखता, हम तो ऐसे हो जाते हैं कुंठित, बुद्धि काम नहीं करती, कैसे समझाया भाई हो बहनों, जरा सोचो विचार करो, थोड़ा सा सोचो तो आपकी बात समझ में आ जाए, इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, ये तो जरा सोचो। अरे वो अपने को तो पाना पड़े, सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, और काले कर्म ईश्वर काल को कलयुग आ गया, काल कलयुग आ गया, हमारा कर्म ऐसा है, ईश्वर ने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया, मिथ्या दोष, काल बहुत बढ़िया है, कर्म भी बड़े भाग्यवान स्वरूप आवक, और ईश्वर ने कर कृपा मान दी, करुणा कर दी कृपा, करुणा कर की नहीं कृपा दीनी, नरवर देह नाती नहीं कृत ही नर खल कर दीनी खे, भगवान भी ऐसे सही मिला, उसको नष्ट कर दिया, कितना साधन धाम मोक्ष दर द्वारा, साधनों का खजाना है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भाइयों बहनों, जो परिस्थिति आती है मनुष्य शरीर में, सबकी सब साधन सामग्री है। दरिद्रता साधन सामग्री, धनवत्ता हो तो साधन सामग्री, मान मिले तो साधन सामग्री, अपमान मिले तो साधन सामग्री, यश होता है तो साधन सामग्री, अपयश होता है साधन सामग्री, शरीर स्वस्थ होता है तो साधन सामग्री, वीर बीमार होता है तो साधन सामग्री, साधन धाम। जो परिस्थिति है वो परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति का कारण है। भाई बहन थोड़ा ध्यान दे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है। याद करो, लिख लो, हृदय में अंकित करो, परमात्मा न किसी बल से, किसी बुद्धिया से, किसी योग्यता से, किसी विद्या से प्राप्त नहीं होती। किसी परिस्थिति से उसकी प्राप्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है। और सब परिस्थितियों प्राप्त होता है, सब अवस्थाओं प्राप्त होता है, सब तरह मनुष्यों को प्राप्त होता है, भाई हो बहन हो, कोई सत्य देना चाहे उसको प्राप्त होते है। परम पिता परमेश्वर है तुम्हें, वो माता से माँ है, वो बालक कुछ भी करे माँ तो कृपा करती है, गोद देती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है, ऐसे भगवान का बड़ा प्यार है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे उत्पन्न किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, पर भगवान की तरफ नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा है, महान पतन की तरफ जा रहा है। विमूढ़ा नान पश्यन्ति सामने उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं, सामने सही छोड़ कर जाता है, सामने दृष्टि को प्राप्त होता है और वहाँ भोग भोगता है, जिस दुनिया में जाए उसने भोगों का सेवन करता है, मन से मन अधिष्ठाए मनस्थाए विष्णु रूप से, पर विमूढ़ता इतनी छाई हुए न देखे, उधर ख्याल ही नहीं करती, होश ही नहीं करती, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान विवेक रूप से चक्षुष के है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका परिणाम क्या होगा ये सोचते हैं। एक बात याद आ गई, हम गाड़ी में जा रहे थे, रेलगाड़ी में मुसाफरी कर रहे थे, ऊपर की सीट मिली, वहां पर रात्रि थी, तो गीता जी का पाठ शुरू कर दिया, गीता पाठ हो जाता हम स्वस्थ अवस्था होती, बीमार अवस्था आदत था, गीता का पाठ करते करते शत्रुआ अध्याय आया, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याद्या आहार सात्विक प्रिया कट्वम लवणा तुष्ण तीक्ष रोक्ष विदाई न आहारा रहस्य श्रेष्ठ दुख शोकामय पदा यातयाम गतर संपूर्ति परिवर्तन उच्चता में दिन भोजन ताम सब प्रिय। पाठ करते एक अर्थ है, मैंने किस टीका में देखा नहीं, सात्विक सुख में पहले फल बताया, भोजन का फल, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्तन, इसको बनाने वाले होते, और भोजन का स्वरूप इसे रस्या स्निग्धा स्थिरा रित्या, ये भोजन बताया पहले फल बताया, और राज्य में क्या बताया, राज्य में पहले भोजन उसमें भोजन कैसे होते हैं उनका स्वरूप पहले बताया, और फल बताया दुख शोक आमय प्रदा सुख दुख रहने वाले, वो पीछे फल बताया, एड काम से फल बताया, क्या मंगल संपूर्ति परमिशन उससे सुविधा हुए जो भोजन उठा, इसमें कोई कोई कहते हैं कि ये भोजन का नहीं आहार का वर्णन है, ये आहार का वर्णन हुआ है, आहार मीमांसा है, हमारी जच्ची नहीं भाई आहार मीमांसा ही नहीं, हम तो गीता दर्पण में लिखा लिख दिया, गीता भर में कहीं आहार की मीमांसा है ही, आहार ही की मीमांसा है, आहार करने वाले की बात बताए, पहले आरंभ होते हुए कहते हैं कि भोजन कौन सा है, तो तीन प्रकार फसाया। 17वें अध्याय में थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ी बात उसे अध्याय की पर है गीता जी की, मेरे को प्यारी लगती है, कह देते हैं क्या करें, जिसके जैसी उसे वैसी कह बना उसका बुरा न मानिए। अधिक कहाँ से लाए, कहाँ से लाओगे महाराज। श्रद्धा पूरी यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है, शास्त्र विधि छोड़ दिया तो निष्ठा भगवान ने बताई। यजन से पूछा तो यजन से यजन शास्त्र दीवान एक सदन श्राद साहब प्रेता भूलों ने भजन ताम साधु ने बताया। अब ये बताकर और फिर कहा भाई परीक्षा कैसे हो, पूजन करे उनकी परीक्षा तो हो जाएगी, यजन से सातु दीवान पूजन करते ही नहीं, कितना गाड़ी पूजन करते हैं, किसी देवता की पूजन नहीं करते, उसे पहचान हो जाए देवता वगैरह करते हैं, यक्ष दक्षों करते हैं, प्रेत भूतों का पूजन करते हैं, तो परीक्षा हो जाए। तो भगवान कहते आहारस्तु भी सर्वश्री त्रिविधो भवति प्रिय, देवता की रुचि जो नहीं है रोटी तो खाएगा कि नहीं, उसने परीक्षा हो जाएगी हमारे, कैसा भोजन को प्यार लगता है, उसमें कैसा खाता है ये नहीं बताया, प्रिय कौन सा लगता है, अब मिले न मिले क्या करें, हम चाहते बढ़िया भोजन न मिले क्या करें। एक दो लड़के आपस में बात करे कि मेरे पिताजी को तो बड़ी शौक थी दूध घी में रोटी चूर कर दूध लेकर खाया करते, दूसरा बोले कि शौक तो मेरे पिताजी को कम नहीं था, बड़ी मिलती नहीं थी शौक में कम नहीं थी, इस बात से शौक तो रहती है, मिले न मिले हम क्या करें, तो मिले न मिले ने बताया, आहार नहीं बताया, आहार उसको सीमित हो बहुत ही प्रिय प्रिय लगता है, अब आप प्रिय मिले न मिले क्या करें, स्वतः प्रिय लगता है। तो सात्विक पुरुष की पहचान करके बताई कि उनको आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना बढ़ाने वाला स्निग्धा स्थिरा निर्जा आहार है सात्विक प्रिया, सात्विक प्रिय बताया आहार कहा सात्विक प्रिय बताया, आहार उसको विश्व तो बहुत ही प्रिय भोजन था मुझसे प्रिय, तो प्रिय लगता है उनको सात्विक को, सात्विक भोजन प्यार लगे तो पहले रोटी खाए, खाने में प्रियता किसी में आकर्षण किसी में, उससे उन गुणों की पहचान होगी, और इनके वशीभूत न हो करके शास्त्र की आज्ञा देकर भोजन करें बहुत अच्छा, पर भोजन से ही परीक्षा हो जाती, आदमी का पता लग जाता है कि रुचि क्या है, इसे किस तरह की चल रही है, तो पूजन से इस पहचान वैसी नहीं है, भोजन से भी होती है, फिर यज्ञ पर दान सब बताए, सब चिंतन करेंगे तो वो यज्ञ दान तब करेंगे तो वैसा वैसा ही करेंगे सात्विक राजस्थान। तो ये विचार उस दिन आया मन में, तो मेरी खुशी आई मन में, जैसे मैं लोभी को पैसे मिलते हैं तो खुशी आती है, ऐसा हमारे गीता का अर्थ मिलता है तो खुशी आती है। इसी बात की हो आयु सत्व वाले हो गए ऋषु का प्रीति भी बदलना रस ने कहा सिरारे आहार सात्विक पता और कटोल लवड़ा तुष्ण तीक्ष रोग आहारा दुख शोक आमय प्रदा। तो सात्विक पुरुष किसी में प्रवृत्त होंगे दीर्घ दृष्टि जाए किसी नतीजा क्या होगा, ये हम काम करने इसका परिणाम क्या होगा, इस बात को सोच करते हैं और राजसिक भोगों में फंसे हुए भोजों से नतीजा नहीं देखते, वो तो कट्टों में नतीजे भी लग जाते हैं, फिर दुख शोक और रोग ये पैदा होते हैं, तो इनको चाहे कौन बताओ, अगर पहले परिणाम की तरफ दृष्टि हो तो चेत हो जाता है, वो साझा नहीं इसका परिणाम खराब है, मनुष्य की बुद्धि है कि वो परिणाम सोच करके अगर दृष्टि डाले नहीं, ये मनुष्य योग्यता है, पशु नहीं कर सकते बेचारा, मनुष्य विचार कर सकता है ये काम करते हैं इसका नतीजा क्या होगा हमारे लिए दुनिया के लिए अभी वर्तमान में परिणाम में क्या फर्क निकलेगा, ऐसा विचार करके वो काम कर सुचिंतम सुविचार ये यदम सुदीर्घ काल विक्रिया बहुत समय होने पर भी उसकी विकार नहीं होता विक्रिया नहीं होता ठीक काम ठीक बन सकता है क्यों सुचिंतित होतम विचार करके बोला सुचार सुविचार ये विचार करके काम किया। ये बात विचार कर काम करो। हरे भाई सज्जनों, विचार मत छोड़ो, सामने विचार करो। मनुष्य को भगवान ने ये शक्ति दी है, अब काम में आप नहीं रहो क्या हुए। रावण जैसा बलवान कहते, रावण बस भरती नर नारी शिवपुर सब देवता भी बस में थे रावण के, वो भी सीता जी की चोरी के लिए गया तो कोई स्वान की लाई। ये तो उचित है, ये देखिए ये देखिए। तो खराब काम में जावे तो पहले मन में पता लग जाता ये काम ठीक नहीं है, पर सुनते ही नहीं, वो तो बस ठीक ही है, भोग आ जाए, रुपया आ जाए, यू आ जाए। अरे आ जाएगा, नतीजा क्या होगा समझे। पर नारी पहनी सुनी चाहे लावो अंग, रावण के दस सिर गए पर नारी के संग। दस मथा है भाई, भाई बूढ़ गया एक मथा कहाँ से विचार करेगा। पंत को होश नहीं, बस ले रावण। तो सज्जनों, सात्विक पुरुषों के विवेक शक्ति पहले रहती है, पीछे कार्य करते हैं। दूसरे भी करेंगे तो पहले विचार पूर्वक, हर एक काम करके विचार पूर्वक, नतीजे की तरफ ध्यान देकर करेंगे। और राजसीय काम करेंगे फिर विचार होगा। कर्मचारी होती है सरब होते हैं, कर्मचारी उड़ जाती है, पड़ेगी कहाँ पता ही नहीं, आग में पड़ेगी, पानी में पड़ेगी, खाड़े में पड़ेगी, बाजार कूद जाते। ऐसे बिना विचार आदमी कुछ काम करेंगे, अरे क्या नतीजा होगा, कहाँ जाओगे, सोची विचार नहीं कूदिए। कुमता भी कूदिए लीजिए किसो दोष, आए देखी ओस या साठी ओसो कोस आवाज कूद दिया, कुमता ही कूद दिया, कुमती कूद दिया, चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो सज्जनों, मानव शरीर मिला है भाई और बहनों, विचार करो, काम करो, नतीजा सोचो कि क्या दिशा होगी। इस दशा के सोचे बिना काम मत करो। सुचिंत चोकतम सुविचार यत्कृतम, बड़ी सुंदर बात समझे। भोजन में विचार करके रखो, निपति सुशासित अच्छे से राजे की सेवा करो, सुचिंत सुशिक्षित विस्तृत विचक्षण भोजन सुशासित स्त्री स्त्री को शासन सबको अंत में क्या ये विचार करोगे तो सब कुटुंब ठीक होगा, बिना विचार करोगे तो कोई काम ठीक नहीं होगा। विचार शक्ति मनुष्य को भगवान ने दी है, ये विवेक प्राप्त है सबको, मनुष्य कोई हो, मनुष्य पशु हो पक्षी हो, नहीं मनुष्य स्त्री हो पुरुष हो कैसा ही मन हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको भी विवेक शक्ति दी है। छोटा बच्चा है 3-4-5 साल का, उन बच्चे के सामने एक मोहर एक बताशा रखो, वो बताशा नहीं लेगा, आपको भोला है अपनी दृष्टि से भोला नहीं हो, मोर का क्या करे, बताशा मीठा मीठा लगता है, अपने विचार से बढ़िया काम करता है, आपकी दृष्टि में भोला भी नहीं, आप कह दिए मोर का करे क्या, कोई स्वाद ही नहीं उसमें, मोर में कितना ढेर आ जा बताशा समझता नहीं, तो जो दिखता जी। ऐसी दशा हमारे भाई बहनों में हो रही है प्राय करके, तो चेत करो। ये जो सत्संग है, गीता जगह विशेष है, ये गीता महाराज प्रकाश देती है, प्रकाश होश लाती है, बेहोशी में होश करा देती है, चेत करा देती है, सावधान करती है। गीता माता है, माँ सदैव बच्चे का पालन करती है, गीता के शरण जाओ, इसके शरण रहे, इसका विचार करे, भीषण करे, सुंदर गीता पढ़े, विचार करे तो उसको सद्बुद्धि आती है, उसके विचार सुंदर होते हैं, अगर वो आदर करे तो, नहीं तो क्या बात है। संसार में ही चल रहे कथा सुना कथा सुना, अरे क्या कथा सुनाओ, कहीं सुनो क्या है, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, लोग कथा सुनते उस कथा का भी सोचते विचार से, हम तो नमस्कार कर देते भाई, और हमारे से तो कुछ होता नहीं, क्या करो। थोड़ा सा विचार करो, मनुष्य शरीर पाया है, तुम्हारे कल्याण किस बात में है ये तो सोचो, सोचते नहीं कथा सुनते हैं, कथा अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। राम 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 बीच में भाषा आदि भाई कहते तो विषयान पूछे थे ऐसे भ्रमूढ़ा नानु पश्यन थी पश्यन थी ज्ञान से कुछ यतंतो योगी रस्ते एनम पश्यन थे आत्मा न्यवस्थितम योगी होते हैं भाई यत्न करते हैं तो अपने अवस्थित जो आत्मा स्वरूप है साक्षात करते आत्मनि अवस्थितम अपने में स्थित है अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त ऐसा अपने स्वरूप है उसको भी यत्न करते हैं तो योगी उसको देख और यत्न से भी अकृतात्मा जिसकी कृतात्मा नहीं है जिसने बुद्धि को कृत नहीं किया बना ही नहीं जैसे माँ से जन्मार बुद्धि थी वैसी बुद्धि बैठी बुद्धि को परिमार्जित नहीं किया बुद्धि अकृत बुद्धि प्रसिद्ध दुर्मति अकृत बुद्धि होने से दुर्मति होता है खराब बुद्धि होती है बुद्धि को समझा विवेक लावे बुद्धि में सार क्या है असार क्या है अभी क्या है परिणाम क्या है हमारे लिए क्या है औरों के लिए क्या है अनुबंधन संयम अहिंसा वन वृक्ष पोषण मोहाचार बेटे कर्मा ये तापस कर्म होता है तो सज्जनों हरे काम सोच कर करो तो यतन तो योगी नश्यंत आत्मा ने अरे वो ऐसा अंधा उग्र यतन तो भी अकृतात्मा ने जिसने अपनी बुद्धि का विचार नहीं किया विवेक की प्रधानता नहीं दी यत्न भी करते हैं जब भी करते कीर्तन करते तत्व का ज्ञान नहीं होता सज्जनों जब विचार करोगे तो होगा विचार शक्ति भगवान ने दी है मात्र मनुष्य को दी है तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्त हो जाए सदा के लिए कल्याण हो जाए ऐसी शक्ति भगवान ने दी है और उस शक्ति का निरादर करते हैं प्राप्त हुई शक्ति का निरादर करके जो चलते हैं इसका नतीजा बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा नहीं नम पश्चिम कहते अचेत साहेब वो नहीं नम पश्चिम देखते ही नहीं सुनाओ तो सुनते नहीं पढ़ाओ तो वो पढ़ जाएंगे पर पता ही नहीं क्या लिखा है पाठ कर जाएंगे सुन जाएंगे और विचार करने वालों को जो महाराज सामने आती है प्रकाश मिलता है सत्संग सुनते तो प्रकाश मिलता है एकदम सावचेत हो जाते हैं काम करते तो सावचेत हो जाते हैं कल्याण की बात अपने अपने आप सूझती है दिखती है साफ साफ दिखने लगती है सत्संग करे गीता सुने गीता का अध्ययन करे विचार करे तो बहुत विलक्षण बातें दिखती है अलौकिक अलौकिक बातें स्वतः पैदा होती है बड़ी विचित्र विचित्र बातें आप से आप आती है मैं बहुत वर्ष हुए गीता पढ़ते हुए नई नई बातें पैदा होती हरेक महीने में कह रहे इतने आदमी बने हरेक वर्ष में तो नई होती है इसमें संदेह नहीं है कई कई नई नई बातें आती है विचित्र विचित्र बातें जिसका वर्णन नहीं कर सकती लिख नहीं सकती कई आती है तिरंगा गीता का पाठ करने से बिल्कुल बिल्कुल बातें आती है सज्जनों भाइयों बहनों गीता कंठ से याद करो इनका विचार करो गीता जैसा ग्रंथ भगवान ने दे दिया रामायण जैसा ग्रंथ भगवान ने भागवत जैसा ग्रंथ उपनिषद महाभारत जैसे ग्रंथ कितनी कितनी विचित्र बातें कितनी कितनी विचित्र कथाएं कितने कितने विचित्र मनुष्य के जीवन को महान बनाने वाली कितनी सामग्री दी है भगवान ने 5 ऋण होते हैं उसमें ऋषि ऋण है संत महात्माओं ने ग्रंथ बनाए उनकी बात पढ़ लो ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाओगे ऋषियों ने देखा कि ये बातें बता दी जा तो बेचारे अपने कल्याण करने दीजिए कैसे करके उन्होंने बताया ये ग्रंथों की रचना की है हमारे लिए जैसे माता पिता धन इकट्ठा करते हैं छोरा छोरी सिंह सुख से रहे उनके लिए ऐसे हमारे लिए ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव करके और बिल्कुल अभी यही है रास्ता है ठीक है पर विचार देकर देखते रहिए सज्जनों देखो विचार करो सोचो जाए सोचो यतन तो भी अकृतात्मा जिन्होंने बुद्धि का विवेक का आदर नहीं किया है उस तरफ जिन्होंने विचार नहीं किया है यतन करते हुए जानते हैं ये 5 श्लोक है 7, 8, 9, 10, 11 ये जीवात्मा को बताए अब फिर ईश्वर का प्रकरण बताते हैं एक तो नतुभाषित 1 श्लोक 4 श्लोक आ रही है। बारह तेरह चौदह पर ये पांच यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषी ते खिलाफ यद चंद्रमसी यद्रागर तब तेजो विद्धिमा मको भगवान कहते हैं यद आदित्य गतम तेज ये आदित्य में सूर्य में है आदित्य गतम तेज वसाया आदित्य में गया हुआ है आदित्य का सूर्य का खुद का नहीं है और चंद्रमा में गया हुआ अग्नि में गुआ तेज है उसे गत है मामकम विधि मेरा है भगवान कहते हैं ये तेज इनमें जो प्रकाश करने की शक्ति हो मेरे से आई हुई है ऐसे ही आदित्य के तन तेज ये हमारे आदित्य आंख इसे एकता से और मन है ये चंद्रमा है और वाणी है ये अग्नि है तो आप के द्वारा दीखता है वाणी के द्वारा बोलते हो चित्त के द्वारा चिंतन करते हो ये तीनों इनमें तेज आया हुआ है शरीर वांग मन हो भी यत कर्म प्राप्त है मेरा इन तीनों से जो कर्म करता है शरीर वांग मन इनसे काम करता है तो सोच कर करना चाहिए भाई सामग्री मिली है बहुत बढ़िया इस सामग्री का उपयोग करना सामग्री के लिए भगवान की अब कमी नहीं है पर उपयोग के लिए स्वतंत्रता भी है चाहे तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करो और चाहे भगवान के शरण हो जाओ मेरा स्वतंत्र आप ही हमारे नहीं चाहिए हम तो आप कहो दे अर्जुन ने कह दिया करी से वचन बस अपनी स्वतंत्रता कुछ नहीं तो निहाल हो जाए ऐसे भगवान की अर्पण करो अपने भगवान की अर्पण हो जाओ यदा आदित्य ग्रंथ जो जगत भाष्य थे अखिल तथ्य जो विजय भूषाली धारिया में मोहिशा पुष्णा में चौधरी सर्वा सोमो भूतवा सरत तो ये बात हो गई क्या करें समय हो गया
गीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय भी पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न ये हड्डियों का ढांचा कभी गिर पड़ेगा ये हड्डियों का निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा निकल जाए उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय तू किस देश का है कहाँ बस रहा है तू किस देश का है कहाँ बस विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है विषय क्यों फंस रहा है, मानुष जन्म पाके न रह जाय रीता, मानुष जन्म पाके न रह जाय रीता, जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाय बीता तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश मालिक वो तेरा, तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश मालिक वो तेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा, उसी की शरण लेके हो जा नचीता, उसी की शरण लेके हो जा नचीता, जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाय पढ़ो क्यों न गीता, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदल रा बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता है न पकड़ो कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना बदलता है वही कृष्ण राधा वही राम सीता, वही कृष्ण राधा वही राम सीता, जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता।